फराइता क्या भला देखा तूने? अल्लजी तवल्ला, उसको जिसने मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ लिया, ये बाज जगह पे आता है कि ये वलीद बिन मुगीरा, जो हजरत खालिद बिन वलीद थे उनका बाप, बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बड़ा समझदार समझा जाता था उस सोसाइटी में। ऐसी समझदारी को क्या करना जिसके बाद ईमान भी ना ला सका। उसको समझ आ गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कलाम है, जो लेकर आए हैं कुरान, ना तो ये जादू है, ना तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई कहानत है, ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, ना झूठों का ये शक्ल ऐसी होती है, ना काहिनों की, ना जादूगरों की, ना मजनून ऐसे होते हैं। उस मान गया था, लेकिन जब लोगों ने उसको कहा कि तू क्या इनके ऊपर ईमान ले आएगा और अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तो वो फिर पलट गया। उसने सोच लिया था कि मैं मुसलमान हो जाता। वो जैसे आज हम कहते हैं ना, जी फलां इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या उनको नहीं समझ आया इस्लाम का? फलां क्या उनको नहीं समझ आता, वो तो इतना इंटेलिजेंट है। हाँ, उस जमाने के इंटेलिजेंट भी थे, इंटेलिजेंस से इसका ताल्लुक नहीं है कि किसी को हिदायत भी मिल जाए। कई लोग होते हैं बड़े इंटेलिजेंट समझे जाते हैं दुनिया में, हिदायत से फिर भी दूर है। तो उस जमाने के भी ये इंटेलिजेंट लोगों में से था, बड़ा शायर भी और बड़ी बातें करना, और इसकी बड़ी बात समझी जाती थी। तो तुमने उसको देखा जिसने मुंह मोड़ लिया? एक तो उसकी बात स्पेसिफिक भी है, और वैसे भी आम कयामत तक तो ये दीन और ये कुरान, इसका पैगाम कयामत तक के लिए जिंदा है। तो आप कोई भी देख सकते हैं जो बड़ा अकलमंद समझदार समझा जाता है, और फिर उसके बाद इस कलाम को सुनता है, कलाम असर भी करता है, लेकिन बस नहीं मानना, मुंह मोड़ लिया। और वह आता कलीला व अकदा, और दिया उसने थोड़ा और उसके बाद रोक लिया। थोड़ा सा माल दिया, उसके बाद रुक गया। तो हुआ ये था कि एक आदमी ने कहा कि मैं इस्लाम ले आता हूँ। तो उसको उसने कहा कि तुम इस्लाम ना लेकर आओ, मैं तुम्हें माल दे देता हूँ, तुम इसके बदले में इस्लाम ना लाओ, और वहाँ जो होगा मैं तुम्हारी जगह खुद ही देख लूँगा, भुगत लूँगा। तो उसको उसने माल दिया थोड़ा, लेकिन उसके बाद उस माल को भी रोक लिया, उस माल को भी ज्यादा ऐसे नहीं कि देता रहा, अब इतना बुखल अंदर है ना, तो उसके बाद उससे भी हाथ रोक लिया, यानी वादा किया और नहीं फिर दिया। ये इसका एक माना है, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। तो अकदा कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रोक लेना ना, तो जिन्होंने कहा है ना कि वलीद बिन मुगीरा था इसका, इस आयत में उसकी तरफ इशारा है, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कबूल कर लिया। जब उसके साथियों ने आर दिलाई तो फिर उसके बाद उसने छोड़ दिया। ठीक है, इसी तरह एक आदमी ने ऐसा किया कि इस्लाम की तरफ आए, तो इसने कहा कि मैं माल देता हूं, तुम इस चीज को छोड़ दो। और इसने जब लोगों से कहा कि मुझे, मैं इसलिए ईमान लाना चाहता हूं कि मुझे डर है जहन्नम के अजाब का, और लिहाजा मैं कुछ माल खर्च करता हूं ताकि जहन्नम से आजादी मिल जाए मुझे, तो लेकिन इसने कुछ माल खर्च किया, फिर रुक गया, कुफर और शिर्क की तरफ दोबारा लौट आया। तो इसमें उसकी तरफ तो इशारा समझ आ गया, लेकिन बाकी इसके बाद आम लोगों के लिए इसके अंदर एक मैसेज है कि जब इंसान खर्च करने लगता है ना, तो बाज दफा सोच तो लेता, मैं यहाँ पे इतना दूंगी इतना, या किसी के ऊपर तरस आ गया तो फिर अच्छा मैं तो सोच रही हूँ इतने 1,000 इसको दे दूं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिया और फिर सोचा नहीं छोड़ो ना, अब इनके पास इतना कुछ और भी है, और भी लोग इसको दे रहे हैं, या कुछ और मुझे देने की क्या जरूरत है, और उसके बाद रुक गए, या उसके बाद जोश ठंडा पड़ गया तो फिर रुक गए, या कहीं डोनेशन देने के लिए प्लेज किया। उस वक्त तो लेक्चर सुन के बहुत जोश में आए हुए थे, तो प्लेज तो बहुत सारा कर दिया और उसके बाद उसको पूरा ही ना किया, तो दिया थोड़ा उसके बाद रोक लिया। ये बुखल है ना, इंसान रोक लेता है उसके बाद उसका दिल नहीं करता कि अब मैं और दूं, या सोचा कि मैं 1,000 दूंगी, जब पर्स से निकालने लगे तो मेरे ख्याल में 500 ही दे देती हूँ, कोई बात नहीं, इतना भी नहीं ये जरूरतमंद। तो आता कलीलन, जितना देने का इरादा किया था उतना नहीं दिया, या जितना दे सकता था उतना नहीं दिया, या जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया, और ये बुखल की वजह से ही होता है। इस तरह और भी चीजें, सिर्फ माल ही नहीं, इंसान के पास वक्त है या सलाहियतें हैं, उनको भी इंसान गिन गिन के रखता है। सोचा ये मैं कमिट करती हूं कि मैं इतना टाइम दूंगी, और उसके बाद दिया ही नहीं, या थोड़ा दिया और उसके बाद रोक लिया, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ है। एक बहुत डरा देने वाली हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के पास किसी जायद चीज का सवाल करता है, यानी इसके पास बहुत कुछ है, एक बड़ा मालदार है, दूसरा जो गरीब है, अब इसके पास बहुत सारा माल जायद है या बहुत सारी चीजें कोई ज्यादा हैं जो देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन जब वो जायद चीज का सवाल करता है जो अल्लाह ताला ने इसको अता की हुई है, तो ये इसमें बुखल करता है। ऐसे आदमी के लिए यानी देता नहीं है, हालांकि इसके पास जायद एक्स्ट्रा है, अगर दे देगा तो वो फर्क नहीं पड़ जाना इसका, लेकिन फिर भी नहीं देता अपने रिश्तेदार को, तो ऐसे आदमी के लिए कयामत के दिन जहन्नुम है, और वो जहन्नुम से एक सांप निकाला जाएगा जो अपनी जुबान निकाले हुए होगा और जिसे शुजा कहते होंगे, वो ऐसे आदमी का तौक बना दिया जाएगा। यानी कयामत के दिन जहन्नुम से एक सांप निकलेगा जो इस आदमी की गर्दन पे लपेट दिया जाएगा। सोचे कई दफा रिश्तेदार आते हैं और बड़े आस के साथ आते हैं कि ये जो हमारा रिश्तेदार मालदार है, और हम कहते हैं नहीं निकम्मा है ये तो कुछ करता नहीं है, छोड़ो हम तो इसको नहीं देते, क्या जरूरत है देने की, अब हमारे पास ही उठा मुंह उठा के चल पड़ते हैं, हर दफा हम ही देते रहे क्या, और इसको भी चाहिए था पढ़ाई कर लेता, खुद ही मेहनत नहीं करता, काम चोर है बिल्कुल, कितनी ही बातें हमें आ जाती हैं, हालांकि हम दे दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में जो जाने वाले लोग हैं ना, कौन कौन जाएगा, हर बदमिजाज, बदमिजाज मतलब इसका बद अखलाक जो होते हैं लोग, बाज लोगों से लोग डरते हैं, ये इतने बद अखलाक हैं माँ हमारे पीछे ना पड़ जाए, इनको तो ना छेड़ो, इनसे बात करना भी इंसान डरता ही रहता है कि पता नहीं बात भी करूं कि ना करूं, लोग उनको अवॉइड करते हैं, बहुत केयरफुल होना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो जो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं ना, लोग उनको अवॉइड करने लगते हैं, समझ जाएं कि देखो ये तो वो सिफत है जो जहन्नुम में ले जाने वाली है, और मुझे अपने मिजाज को बदलना है, इसके ऊपर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, फिर इसी तरह अकड़ के चलने वाला, बहुत ज्यादा माल को जमा करने वाला और बहुत ज्यादा बुखल करने वाला, ये लोग जहन्नमी। और आपको पता है बखील से शैतान नहीं डरता, उसको पता है कि ये उससे मैंने क्या डरना है, ये वो गनी से डरता है, उसको ये है ये जो गनी है ना ये माल खर्च करेगा और अल्लाह को राजी कर लेगा, तो बखील है इसने कहीं नहीं जाना, इसका बुखल इतना स्टिंजी है, दिल इतना तंग है, ये तो मेरे काबू में है ही, तो इससे वो नहीं डरता, उसको डर लगता है तो उससे लगता है जो इसका हाथ खुला है, उसको पता चलता है कि ये खर्च कर करके एक दिन कोई मकाम पा लेगा। आइंदा इल्म गैबी फहुआ यूरा फहुआ यरा, तो क्या उसके पास इल्म गैब है कि वो देख रहा है, कि वो कहता है कि आज मैं जितना दिया गया हूं इसी तरह आखरत में भी मेरे पास पता नहीं कितना होगा, आज या तो कल भी होगा, तो क्या है ये गैब का इल्म जानता है, गैब को देखा है क्या जो इसको इतनी खुशफहमी हो गई है। तो वलीद बिन मुगिरा के उससे देखें तो वो लोग तो उस जमाने में सोचते ही थे जो बड़े बड़े सरदार थे कि ऐसा ही होना है हमारे साथ आखरत में भी अच्छा ही होगा, यहाँ पे हम इतने वेल टू डू हैं तो वहां पे भी होंगे, तो इसके अलावा भी हम देखें आज भी ऐसा लगता है कि बाज लोग गैब को देखा है, उनको लगता है हम कितने भी गुनाह कर लें हम अपनी जिंदगी में कोई इस्लाह का प्रोग्राम नहीं रखते, लेकिन जन्नती तो हम ही हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, जन्नती हम ही हैं। ऐसे लगता है जन्नत का जो टिकट है ना, उन्होंने अपनी जेब में रखा हुआ। तो क्या वो गैब देखाए हैं? इंसान कैसे सोच सकता है? ये कंफर्म है मेरे लिए, ऐसी चीजें जो गैब से मुतालिक हैं उनके बारे में कंफर्मेशन रखना, के जैसे मैं वहां पे देख के आ गया हूं, मेरे साथ तो यही होगा और ऐसे होगा। ठीक है, एक अच्छी उम्मीद रखना वो एक अलग बात होती है, लेकिन साथ खौफ भी होना चाहिए। कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। अमलम युनब बीमा फी सुहफी मूसा, क्या इनको पता नहीं है, क्या इसको किसी ने खबर नहीं दी जो सहीफों में था मूसा अलैहिस्सलाम के, वह इब्राहिम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की? इनको वो बात नहीं पहुंची जो इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में थी? मूसा अलैहिस्सलाम का सहीफा तो तौरात थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे आज मिलते नहीं है, लेकिन उनके पर भी हमें कुरान से पता चलता है कि सहीफे उतरे थे। और हम फीसुहुफी इब्राहिम व मूसा हम ये पढ़ते हैं ना, तो सूरह आला में, तो इससे पता चला है कि हमें सुहुफ इब्राहिम और मूसा की बात याद करा के बताया गया कि इनको नहीं खबर कि उसमें कामयाबी के लिए क्या चीजें बताई गई थी, क्या चीज थी, क्या यही उसमें कहा गया था। इसलिए कि ये लोग अपने कहते आपको कहते थे कि हम दीने इब्राहिमी पे हैं, तो कित क्या दीने इब्राहिमी में यही है कि जिनको यहाँ पे बहुत मिला हुआ है उनको वहां पे भी मिलेगा? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन? जिन्होंने वफा का हक अदा कर दिया, यानी अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी, जो जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो सब पूरा करते रहे, कोई चीज को उन्होंने इनकार नहीं किया। वैसे भी ताला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फतम्महुन, अल्लाह ताला ने उनको जितना भी आजमाया वो हर आजमाइश में पूरे उतरे, वाकई वो वफादार थे, वाकई अल्लाह ताला ने उनको खलील का लकब दिया, खलीलुल्लाह। खलील वो दोस्त होता है जिसकी दोस्ती में कोई खलल ना हो, कोई कमी ना हो, तो वो वाकई वफादार थे। उन्होंने ये नहीं किया कि मैंने एक काम कर लिया तो अब काफी नहीं हो गया। आतिश नमरूद में भी वो पूरे उतरे, आग में कूद गए, ठीक है, जिस वक्त वतन से निकलना पड़ा, निकाल दिया गया, तब भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह की खातिर। फिर उसके बाद जब बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी तो उसमें भी पूरे उतरे, उन्होंने कहीं पे भी ना नहीं की और कहीं पे भी वो पीछे नहीं हटे। हालांकि एक एक चीज को देखें बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह ताला का हर हुक्म उन्होंने मांगा माना, और ये नहीं सोचा कि ये छोटा या बड़ा। जब देखें आपको पता है ना सुन्नत इब्राहिमी है खतने करना, जब उनको खतनों का हुक्म दिया गया तो उन्होंने खतने भी किए बड़ी उम्र में आके, सोचे वो बच्चे नहीं थे ना, उस जमाने में कोई अनस्थीजिया होगा, इमेजिन करें एक बड़े आदमी के लिए खतने करना, तो वो भी किए, बाल काटे, बाल साफ किए और नाखून तराशे, छोटी हो या बड़ी हो हर हुक्म के ऊपर वो पूरे उतर रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं देखी, ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये छोटा सा काम है, ये तो छोटा सा हुक्म है, बड़े बड़े करने चाहिए, छोटी बातों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही सोचते रहते हैं ना, छोटी है कि बड़ी है, पहले देखें कि ये कुरान में आया है कि हदीस में है कि क्या है, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे, हमने करना भी है कि नहीं करना, और ये कितना बड़ा गुनाह है उसके मुताबिक हम सोचेंगे कि इससे बचना भी है कि नहीं बचना। तो वो तो ऐसे नहीं सोचते थे, वो मानते ही चले गए। इस काला लहू रब्बू अस्लम काला अस्लम तुली रब्बिल आलम, उसके उसके रब ने कहा कि तुम झुक जाओ, सरेंडर कर दो, उन्होंने कर दी, कोई सेकेंड थॉट था ही नहीं। तो इब्राहिम वाकई वफादार थे, लॉयल सर्वेंट, उन्होंने ये नहीं कहा आए औलाद कैसे छोड़ूं, आए घर बार कैसे, जब बीवी और बच्चे को लकोदक सहरा में छोड़ने का हुक्म आया, वो कितनी बड़ी आजमाइश, यहाँ पे मर जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, पानी पीने तक को नहीं है, छोड़ के तो चले गए, सवाल ही नहीं कि ये सरवाइव करेंगे कैसे, या अल्लाह कुछ इंतजाम तो कर दे इनके लिए। उनको तो नहीं पता था पीछे जमजम निकला ना, उनको क्या पता कि जमजम निकलना है या क्या, बस उनको अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह का हुक्म है, बस छोड़ दी। वो कोई किसी आजमाइश से, जैसे जान की आजमाइश आई, औलाद की आजमाइश आई, घर बार की आजमाइश आई, वतन की आजमाइश आई, रिश्तेदारों की आजमाइश आई, कोई चीज भी आप देखिए हर चीज में पूरे उतर रहे। अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम, और बास कहते हैं मूसा और इब्राहिम अल्लज़ी वफा, दोनों के लिए ही आया। अल्लाह तज़िर वाज़िरा तुम विज़रा उखरा। अब ये सारी बातें वो बताई जा रही हैं जो सुहुफ़े इब्राहिम और मूसा में थी, ठीक है। और उनमें क्या है, एक बात क्या थी, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी सब अपना अपना खुद भुगतेंगे जो किया है। ये जो आज दुनिया में लोग कहते हैं ना, आ मेरी खातिर कर लो कोई बात नहीं, कल को मैं देख लूंगी वहां पे, कोई बात नहीं मैं तुम्हारी सजा भुगत लूंगी। दोस्तें दोस्तों को कहती हैं, कहीं वालदेन बच्चों को कह रहे हैं, कहीं शौहर बीवी को कह रहा है, नहीं कोई ही किसी का बोझ नहीं उठाएगा, उस दिन अपना अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। बल्कि और तो और किसी ने क्या उठाना है, कोई बुलाएगा भी कि आओ मेरा कोई बोझ उठा ले, कोई भी नहीं आएगा, कोई तवज्जो भी नहीं करेगा, भागेंगे बल्कि एक दूसरे से कि कहीं ये ना हो कि मेरे ऊपर अपना बोझ डाल दे। तो हर किसी को अपना उठाना पड़ेगा, और कुछ लोग होंगे जिनको दूसरों का भी उठाना पड़ेगा। और वो कैसे, जैसे आपको पता है काबिल को सारे कातिलों का बोझ भी उठाना पड़ेगा, अपना भी उठाएगा, सब कातिलों का भी उठाएगा। क्यों, इसने कत्ल की शुरुआत की थी, उसने आगे कहा नहीं किसी को कि तुम भी कत्ल करो, लेकिन फर्स्ट वन जिसने इसको स्टार्ट किया वो काबिल था। इसी तरह हम भी इस चीज से बहुत डरा करें, ये आसार है जो इंसान पीछे छोड़ जाता है कि कोई भी चीज में ऐसी स्टार्ट ना कर दूं। हमें बहुत शौक होता है ना नई से नई चीजें करने का, बस ऐसा कोई मैं ट्रेंड सेट करूं, ऐसा कोई मैं फैशन कर लूं, ऐसी कोई मैं चीज करूं कि बस जो यूनिक ही हो, किसी ने ना की हो। तो अगर वो अल्लाह की नाफरमानी की चीज है तो डर जाए, इसलिए क्योंकि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अब कयामत के दिन आप ये नहीं कह सकेंगे कोई मैंने तुम्हें कहा था कि ये करो, तुमने खुद ही किया है। उस वो उसका गुना उसको तो होगा ही होगा, लेकिन मेरे सर भी पड़ जाएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था। तो चाहे मुझे कोई लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चाहे मेरे बच्चे घर में मुझे देख रहे हैं, कई लोगों को मैं सुनती हूँ वो ये कह रहे होते, ये हमारी अम्मी ये किया करती थी, तो फिर मैं उस वक्त तो नहीं मुझे इतना होश था, लेकिन उसके बाद मैं, मुझे अम्मी का आज तक याद है वो ऐसे करती। अब वो अगर अच्छाई का काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो उसकी नेकी उसको भी मिलेगी। लेकिन अगर वो कोई बुराई का काम है, जैसे कि कोई कहे कि मेरी तो अम्मी भी हिजाब नहीं करती, वो भी नहीं सर कवर करती, तो मैं कैसे कर लूं, तो अब इसका गुना माँ को भी है, तो वो नहीं करती ना, इस बच्ची ने उसको देखा, वो अपना डबल गुना उठाएगी, अपना तो उठाएगी उसका भी उठाएगी। इसी तरह और जो भी लोग देख रहे होंगे उसको, हम शादियों पे ऐसे ट्रेंड सेट करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। अब 200 लोग अगर शादी पे आए हैं, 200 लोगों ने देखा और फिर उन्होंने कहा याद है उसकी शादी पे भी तो ऐसा हुआ था, उसने भी तो ऐसा किया था, चलो वो करते हैं। अब वो कोई बुराई का काम है, सबने जिन्होंने उसको कॉपी किया इसके ऊपर उनका गुनाह। और आजकल तो ऐसी ही हो रही हैं शादियां, उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया, इन सबको देख के उसने किया, उन सबको गुनाह। तो हम जब कोई भी ट्रेंड सेट करते हैं, या हमने किसी को कॉपी किया, किसी ने हमें कॉपी की, तो हमारे पर उसका गुनाह है जिसने हमें कॉपी किया, और हम दोनों का गुनाह उसके ऊपर है जिसको मैंने जाके कॉपी किया। तो ये चीजों को समझना चाहिए कि चाहे कोई नहीं भी कह रहा कि ऐसा करो, तब भी अगर किसी की देखा देखी कोई चीज भी कोई शुरू करता है, तो उस पहले करने वाले को गुनाह उसका भी मिलता है, तो वो अपने भी बोझ उठाएंगे, उनके भी बोझ उठाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बे। बाज़ दफ़ा हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं उल्टे सीधे काम करते हुए, चुगलियां करते हुए, गीबतें करते हुए, झूठ बोलते हुए, हेरा फेरियां करते हुए, लगाई बुझाई करते हुए, वो देख रहे होते हैं। और बाज़ बच्चे इतने सच्चे होते हैं, वो माँ बाप को कह भी देते हैं कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो लेकिन वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं आज, कल को उनके अंदर भी जब वो आदत आ जाएंगी तो गुनाह वालदैन पे होगा। तो गुनाह को ये ना कभी सोचे कि कोई बात नहीं, ऐसे पता नहीं कितने लोग मुझे देख के वो गुनाह करना शुरू करते हैं या उस पे दलेर हो जाए। पहले उनके वो सेकंड थॉट्स आते थे, लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत ही बेबाक हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये भी तो करती है, हमारी अम्मी भी तो करती, हमारी फलां भी तो करती, मेरी दोस्त भी तो करती है। तो उस दिन कोई किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, अपने अपने ये भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी को कहा है या किसी ने हमें देख के किया तो वो भी बोझ हमारा ही हो गया, डबल हो गया। इसलिए किसी को देख के भी, किसी के गुनाह को देख के उसको उस पे राजी नहीं होना, उसको पसंद नहीं करना। वरना अगर राजी हो गए उसके ऊपर कि हाँ ठीक है ना, तो क्या हो गया, बल्कि कुछ लोगों के सामने ये बात आए तो वो उस चीज को बुरा नहीं मानते। मिसाल के तौर पे कोई आदमी है, उनको यह है कि नहीं, औरतों को तो बेपर्दी घूमना चाहिए, तो क्या हो गया, ये तो आजादी है, अब ये क्या दकियानूसी बातें। किसी के गुनाह को देख के उस गुनाह को पसंद करना और उसको दिल में ना बुरा जानना, ना उसको मना करना, मना चलो नहीं कर सकते तो दिल में तो बुरा जाने, अगर ये भी नहीं किया और बल्कि उल्टा उसको पसंद कर रहे हैं, तो उसका भी गुनाह इस बंदे को उठाना पड़ेगा। लिहाजा गुनाह से नफरत होनी चाहिए, उससे मना करना चाहिए, अगर मना नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानना चाहिए, वरना ये बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो अपना अपना सबको उठाना पड़ेगा, इसलिए लिहाजा इस दुनिया के अंदर किसी की बातों में आके गुनाह मत करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, उसने क्या दिया उसने क्या दिया, अब क्या करती वो नाराज हो जाएगा, अब क्या करें लोग, कर तो लोग तो नहीं मेरा बोझ उठाएंगे, ना मेरे बच्चों ने मेरा बोझ उठाना, ना शौहर ने उठाना, अपना अपना तो खुद ही उठाना पड़ेगा ना। लिहाजा जब वो अल्लाह की नाफरमानी का कहें तो उनके सामने यही आयत रखें, ला ताज़िरु वाज़िरा तुम विज़रा उखरा, उस दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अगर आज कह भी रहे हैं ना कि हम उठा लेंगे, हम तुम्हारा जवाब दे देंगे, तुम फिक्र ही ना करो, मैं अल्लाह ताला को ये कह दूंगी, ये जो बड़ी बड़ी बातें लोग आज करते हैं ना, इनकी बोलतियां बंद हो जानी कयामत के दिन, अपने आप को नहीं बचा सकेंगे, दूसरे के लिए क्या बोलना है इन्होंने, इसलिए इनके धोखे में ना आना, समझ जाए अपना अपना मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा, हर एक को अपनी कब्र में खुद जाके भुगतना है, कोई आपकी कब्र में आपके साथ नहीं आएगा। वह अल्लई सलिल इंसानी इल्ला मासा, और इंसान को वो ही मिलेगा जो उसने कोशिश की होगी, उसके अलावा नहीं कुछ मिलना, यानी इंसान को अपनी कोशिश का ही अजर मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी और का किया हुआ मैं ले लूं उस दिन जाके, जी वो उन्होंने हज किए मैं उनके हज अपने पास ले लिखवा लूं। दुनिया में तो ऐसा हो सकता है ना, कमाता कोई और खाता कोई है, कारोबार एक नस्ल करती है, इतनी मेहनतें करती है, लेकिन दूसरी नस्ल उसके फल खाती है, उनको चला चलाया कारोबार मिल जाता है, लेकिन कयामत के दिन ऐसा नहीं होना कि भाई करना कर कोई और रहा है और जी मजे कोई और ले रहा है, ये नहीं होगा। हाँ, सिवाय उन आमाल के जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इंसान जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ते हो जाते हैं, जो वो करता था जाहिर है, अब ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना हज ज़कात, ना कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के। तीन चीजें क्या है, सदका जारिया के काम, यानी जो माल खर्च किया उसने, वो जब तक उस माल से फायदा होता रहेगा लोगों को तो उसका नेकी लिखी जाती रहेगी, नेक औलाद है या लोगों को नफामंद इल्म जो उसने दे दिया था वो है, उससे जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे तो इसको अजर मिलता रहे, नेक औलाद भी उसका भी अजर मिलता रहेगा, वो नेकियां जो भी करती रहेगी, वो ये नहीं कि हर एक नेकी पे खड़े हो गए ये कहें अब मैं ये नियत करती हूँ मेरी अम्मी को उसका सवाब मिले, अब ये दूसरा काम नियत करते हैं इसे मेरे अब्बू को मिले, ये नहीं है जरूरी, वो जो भी नेकी करेंगे उसका अजर इसके वालदेन को भी मिलता रहेगा, क्योंकि नेक औलाद जो है ना वो वालदेन का सदका जा रही है। तो ये चीज हमें पता चलती है कि इंसान ने, हालांकि इसमें भी कुछ कोशिश तो है इंसान की, जाहिर है नेक औलाद के लिए भी इंसान कोशिश करता है, जिसको इल्म सिखाया उसके लिए भी, और ये बाद में भी चलती रहेंगी, इनके सवाब मिलते रहेंगे। और उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिनका सवाब मिल सकता है, वो इंसान ने खुद नहीं की है लेकिन उनका सवाब मिल सकता है, जो हमें हदीस से पता चलती। जैसे कोई दुआ करता है किसी के लिए तो उसका उसको वहां पे मिलता है, मसल किसी के बख्शिश के लिए दुआ करता है, जन्नत के लिए दुआ करता है तो उसका भी उसको सवाब मिल सकता है। या कोई किसी के लिए हज बदल करता है या उम्रा बदल करता है तो उसका भी उसको सवाब मिल सकता है। और बाकी जो भी माली इबादत है, मसलन सदका करता है, इसका भी हमें हदीस से पता चलता है कि साहबी आए तो उन्होंने फरमाया था मेरी वालदा को सदका करना बड़ा पसंद था, अगर मैं आज उनके लिए उनकी खातिर सदका करूं, उनके लिए सदका करूं तो क्या इसका अजर उनको मिलेगा? आपने फरमाया हाँ मिलेगा। वैसे भी औलाद जो काम करती है उसका भी अजर मिलता है, लेकिन वो खास तौर पे अपनी वालदा की नीयत से वो सदका करते तो उसका भी मिलेगा, कोई भी और सदका करेगा उसका भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह कुर्बानी का भी बाज जगह पे आता है कि उसका भी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की थी। मगर उसके अलावा जिन चीजों का कोई सबूत भी नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर नमाज का कोई सबूत नहीं मिलता कि ये मैं 2 नफल पढ़ रही हूँ उस फलाने के नाम के, कोई नफल पढ़ना किसी के नाम के वो उसको नहीं पहुंच रहे, ये खालिसतन बदनी इबादत है, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। इसी तरह रोजा रखना, रोजा किसी ने अगर अपने रोजे छोड़े में उसके रह गए थे अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो रोजे उसके वारिस रख सकते हैं, इसकी हमें दलील मिलती है। लेकिन नफली रोजे किसी के लिए रखते रहना, ऐसे ही नफली रोजे में अब ये पीर और जुमेरात का रोजा फलां के लिए रखना शुरू कर दूं, नहीं ये नहीं। उसके फर्ज रोजे रहते थे ना, उनका या तो फिदिया दे दें या फिर उनके वारिस उसको रख लें, मगर नमाज नहीं अगर उसने जिंदगी में पढ़ी तो फिर अब उसका नहीं कुछ हो सकता। कुरान नहीं पढ़ा तो कुरान भी, इसका भी नहीं कहीं हमें सबूत मिलता। लेकिन जहां पे हमें चीजों का सबूत मिलता है वो जरूर आप करें, लेकिन जिसका सबूत ही नहीं मिलता, अब जिन लोगों ने कहा कि नहीं पढ़ सकते हैं जी कुरान, क्यों कहां से वो सबूत लाए, उनके पास सबूत कोई नहीं, लेकिन वो कयास करते हैं, वो कहते हैं कि चूंकि हज का मिल जाता है, चूंकि उम्रे का मिल जाता है तो दुआओं का मिल जाता है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर ही रख के ये भी सोच लेते हैं कि चलो कुरान का भी मिल रहा होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। जिस चीज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया, देखिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को समझते होते तो सहाबा कराम कहीं करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं करते, उन्होंने क्यों नहीं कुरान पढ़ पढ़ के सवाब के हदीये मैयत के लिए भेजी? अगर ये वाकई चीज होती तो हमें कहीं पे भी नहीं मिलती एक जगह भी कि सहाबा में से ही किसी ने किया हो, जबकि वो तो हमसे नेकियों में बहुत ज्यादा सबकत ले जाने वाले थे, उनके नहीं फौतशुदा होते थे लोग। तो जो नेकी के काम है, एक तो इंसान के अपने अपने खुद उसको काम आएंगे जो उसने कोशिश की, दूसरे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए सिर्फ वो काम आएंगे। और उनमें जैसे मैंने आपको बताया दुआ भी है, सदका है, हज है या उमरा है, और बाकी और कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जो हम खुद से बना के और उसके ऊपर मतलब एक इमेजिन कर लें कि ये भी जरूर होगा ही, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बता देते। वो बहुत आसान था, वो लोग वहां पे तो हुफाज थे, उनके लिए क्या मुश्किल था कि कुरान पढ़ पढ़ के बख्शते रहते। लेकिन आज इसको भी कारोबार बना लिया गया, ऐसे करते हैं कि जब मदरसे में गए वहां पे इन्होंने पहले ही कुरान पढ़ के रखे होते, जी हमारे पास इतने कुरान पढ़ के रखे हैं, इतने पैसे दें इतने कुरान हम आपको दे देते, हमने बच्चों से पढ़ा पढ़ा के रखे हैं। वो बच्चों को जो है खाना दे देते या उनको कह देते हैं कि भाई इतने कुरान पढ़ दें और खाना वहां पे पहुंचा दिया, चलो बड़ा एहसान कर दिया हमने हमारे फौजी उद्गान, वो भी खुद नहीं पढ़ना कुरान, वो भी बच्चों से पढ़वा लिया मदरसे के बच्चों से, या अपने घर में एक रख ली मजलिस जिसमें आओ लोगों आके कुरान पढ़ो और हमारे मुर्दे बख्शे जाएंगे आपके कुरान पढ़ने से। कुरान इस काम के लिए तो आया ही नहीं कि आप मुर्दों को पढ़ पढ़ के बख्शे, ना कहीं तो ये मकसद भी होता कुरान में पता चलता हमें कि हम मुर्दों को बख्शने के लिए भी कुरान पढ़ा जाता है, हमें तो हर वक्त यही बताया गया वो शिफा है, वो हिदायत है, वो बरकत है, वो रहमत है जब आप उसको पढ़ेंगे, ये नहीं कि पीछे भेजें। तो इंसान के लिए वो ही है जो उसने कोशिश की। अच्छा एक और एंगल से भी इसको देखें, इसका मतलब अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को देखता है, वो ये नहीं देखता कि इसका रिजल्ट क्या फिर निकला। ये कोशिश इसने की, दुनिया में तो क्या देखा जाएगा, बस ना आप हमारे पास आते हैं, हम आप कितना भी कह दें मैं पूरी रात पढ़ती रही, दिन पढ़ती रही, लेकिन जो आप टेस्ट करेंगे हम तो उसके मुताबिक ही आपको नंबर देंगे ना, वो आपका रिजल्ट उसके मुताबिक हुआ। हमने नहीं देखना कि आपने 10 दिन मेहनत की या 20 दिन की, या आप कितनी रातें सोए ही नहीं, इतनी मेहनत करते रहे, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ये नहीं है कि वो रिजल्ट देखे कि एंड में इसने जब एंड किया तो उस वक्त इसके नंबर कितने हैं, अल्लाह ताला देखता है इसने मेहनत कितनी की, इसने कोशिश कितनी की, ये कितने कदम चला, इसने कितना इसके ऊपर वक्त लगाया, एक एक लम्हा, एक एक कोशिश, एक एक मेहनत को वो देखता है। अब वो पता है क्यामत के दिन कई अंबिया के साथ दो दो चार चार भी उम्मती होंगी, तो ये नहीं कि वो फेल हो गए, वो तो फिर भी कामयाब है। हालांकि देखे उन दो चार से क्या फर्क वो होता है, अब लूत अलैहिस्सलाम के साथ उनकी सिर्फ बेटियां गई थी, तो वो फेल नहीं हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि कितने लोग आए। हम जब दावा के काम के लिए निकलते हैं तो हम सोचते हैं कितने लोगों ने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया, बस वो मेरी कामयाबी है। नहीं, आपकी कामयाबी ये है कि आपने कोशिशें कितनी की है। एक बंदा हो सकता है सारी जिंदगी कोशिश करता रहे, उसके हाथ पे कोई एक भी ना ईमान लेकर आए, एक भी ना इस्लाम लाए, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं देखना कि इसके 0 नंबर हो गए क्योंकि एक भी नहीं लाया। अल्लाह ताला ने ये देखना इसकी कोशिश कितनी थी। आप इसी तरह दावा के लिए कितने घंटे लगा देते हैं, सुबह से खड़े, मसलन आपने 10 रजिस्ट्रेशन की, किसी और ने 200 कर दी, आप अब सोचते हैं मैं 10 की, मेरे को क्या फायदा हुआ, सारा दिन से मैं खड़ी हूँ, किसी ने बात ही नहीं सुनी। तो याद रखिए कि आपका अजर लिखा गया, आपने जब से घर से कदम निकाला आपका अजर चल रहा है, मीटर ऑन हो गया जब तक आप वापस नहीं आए, क्योंकि तो अल्लाह ताला क्या देखता है, मेहनत कोशिश, वह अन्ना साया हूँ सौफ यूरा, अल्लाह ताला आपकी मेहनत देखेगा। और इंसान को यहां पे कहा गया उसकी कोशिश अनकरीब दिखाई जाएगी और देखी जाएगी, दोनों मानी है, अरा यूरा दिखाई जाएगी देखी जाएगी, यानी उस दिन कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसान को उसकी कोशिशें उसकी मेहनतें दिखाएगा, अल्लाह ताला खुद भी देख रहा है वो जो मेहनतें उसने की, वो देखेगा मेरी भाग दौड़, मेरे ये काम, मेरे ये काम। इसीलिए तो वो कहेगा ना, जब अपनी ये नेकियां देखेगा तो वो नारा लगाए हा मुकराऊ किताब ही है, वो लोगों को कहेगा लो तुम भी आओ देखो मेरी किताब, इतना उसको फखर होगा। दुनिया में नहीं आप ये कह सकते कि आओ आओ मेरे अमल देखो, आओ आओ मेरी किताब देखो, आओ देखो मैं कितनी नेकियां कर रही हूँ, लेकिन हाँ कयामत के दिन जब आप कंफर्म हो गया ना, पास हो गए हो, असल तो वही तब की है ना, यहाँ पे हम डींगे मारते रहे मैं तो इतनी नेक हूं, मैं अल्लाह जाने वो नेकियां मेरी कोई कबूल भी हुई हैं कि नहीं, अल्लाह जाने कितनी नेकियां मेरी मेरे गुनाहों की वजह से मिट गई हैं, कितनी नेकियां मेरी एहसान जिताने की वजह से मिट गई, उल्टा गुनाह आ गए उसमें, कितनी नेकियों में रियाकारी हो गई है वो सिरे से गायब ही हो गई, तो कुछ भी नहीं पता। कितनी नेकियां हैं कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, वो मेरा काम जैसे मैंने करना चाहिए था वैसे नहीं किया, उसके अंदर कितनी गलतियां थी, उसके नंबर ही कितने कम है हमें नहीं पता, वो कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा को बना के भी दुआएं कर रहे हैं रब्बना तकबल मिन्ना, और हमें कंफर्म है जी हमारी तो ये इतने खुश हो रहे हैं, इतने उछलते फिर रहे हैं, मैं तो ये करती हूँ मैं तो ये करती हूँ, कंफर्म है आपको कबूल हो गई है, कंफर्म है ये पढ़ना कबूल हो रहा है, वो किसी की कंफर्मेशन नहीं है। इसीलिए दुआएं करते रहते थे अंबिया, नेकी के काम करके भी दुआएं करते थे, उनके तो परफेक्शन के लेवल पे काम थे, तो हमें तो इतनी खुशी हो जाती है कि हम उसके दावे और ऐलान करते फिरते, और अगर कहीं दिल में जरा डर हो ना अल्लाह पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं, अल्लाह तू कबूल कर लेना, अल्लाह मैंने तो कोशिश ही किया या अल्लाह टूटी फूटी कोशिश है तू इसको कबूल कर लेना, जिसके दिल में ये डर होगा ना वाकई जेन्युइनली, वो नहीं इस तरह से डींगे मार सकता, वो नहीं शेखियां मार सकता, शेखियां मारने वाला वो ही है जो बड़ा समझता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा कर दिया और बस ठीक है जो मैंने किया है, आई एम गुड, वो इतना कॉन्फिडेंट है। वो जो बेचारा डर रहा होगा वो क्या बोल सकता है। तो उस दिन इंसान को जब कंफर्म हो जाएगा ना, फिर वो नारा लगाएगा, आओ लोगों मेरी किताब देखो जरा, मुझे पता था एक दिन कयामत का दिन आना है, हिसाब किताब होना है। हम अपनी किताब को देखे क्या कहेंगे, खुद सोचे मेरी भाग दौड़ किस में लग रही है। सही होती है ना भाग दौड़, कोशिश, मेहनत, ये जो हम सारा दिन हमारी दौड़े लगती हैं कभी किधर कभी किधर, वो किस में लग रही है, वो हमारी सही क्या है, किधर हम भागते फिरते हैं, क्या वो दिखाने के काबिल होंगी लोगों को कि हम भी कह सके हाँ वो मुकराओ किताबिया, या वो ऐसी तो नहीं कि हम शर्मिंदा हों या पछताएं कि मैं किधर दौड़े लगाती फिर रही थी, और मुझे किधर लगानी चाहिए थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कितना वक्त जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। तो साई जो है वो नेकी की भी हो सकती है और बेकार के कामों की भी हो सकती है और गुनाहों की भी हो सकती है। कई लोग गुनाहों में भाग दौड़ कर रहे हैं, फहाशी के कामों में भाग दौड़ कर रहे हैं, कई नेकी में कर रहे हैं, और कई कुछ भी नहीं, फजूल ही वक्त जाया कर रहे हैं, उसमें ही भागे दौड़े हैं उनकी। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ा अल औफा, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फिर बदला दिया जाएगा, बदला पूरा पूरा। तो तुम्हें किसने कह दिया कि ऐसे ही बचत हो जाएगी, तुम्हें किसने कह दिया कि जो यहाँ पे मिला तो वहां पे भी मिलेगा, वहां पे तो अब तुम्हारी मेहनतें देखी जाएंगी, कोशिशें देखी जाएंगी, फिर पूरा पूरा उसके मुताबिक बदला दिया जाएगा। तुम इतनी खुशफहमी में बैठे हुए हो, ऐब देख आए हो क्या, मेहनत करनी नहीं कुछ, कोशिश करनी नहीं कुछ, लेकिन बस मुतमईन है ये जन्नत तो हमारे लिए ही है। तो वहां पूरा पूरा हर एक को बदला दे दिया जाएगा। तो कितना क्लियर है ना, कितनी वाजे बात है। फिर भी हम पता नहीं खुशफहमियों में किस दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में करना वरना कुछ नहीं होता, सिर्फ दावे, सिर्फ बातें, सिर्फ एक खुशफहमियां, एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं। भाई आज किसी को आप कहें, कोई भी इंसान हो आप उसको बेवकूफी कहेंगे जो बस बैठा हुआ ड्रीम करता रहे मेरा ऐसा मेंशन हो, मेरा ये हो मेरा, और कोई कोशिश ना करे। दुनिया के लिए तो हम बड़े समझदार हैं, हम कहते हैं कोशिश के बगैर तो नहीं होगा ना, कोशिश करो। तो हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री के लिए कोशिश करते हैं, जॉब पे जाते हैं, जॉब को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रोमोशन के लिए कोशिश करते हैं, घर बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, हर चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आखिरत के मामले में क्या कहते हैं, कोई कोशिश की जरूरत नहीं, वो तो बस वैसे ही मिल जानी है। कोशिशें तो उसमें करने की रिवाज ही खत्म हो गया कि इसके लिए भी कोई भाग दौड़ हो रही है, मेहनत हो रही है, बल्कि जो कर रहे हैं उनको भी कहते हैं ये भी तो पता नहीं पागल है, और इस रास्ते में अगर हम थक जाएं इस कोशिश में तो फिर तो हम इतना वाबेला करते हैं, हाय मैं तो आज थक गई, हाय खड़ी खड़ी थक गई, शादियों ब्याहों के लिए, शॉपिंग्स के लिए, घर घर के लिए, हम कितना भागते दौड़ते हैं और कितना थकते हैं, लेकिन उसके लिए हम इतने परेशान नहीं होते और ऐसा रोते धोते नहीं है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में अगर थक जाए और उसके लिए मेहनत कर जाए तो 10 लोगों को पकड़ पकड़ के बताते हैं इतनी मेहनत कर ली मैंने, इतना काम कर लिया मैंने। तो तुम्हारी तो मेहनतें देखी जाएंगी, कोशिशें ही देखी जाएंगी, सही देखी जाएगी, कितनी मेहनत करके आए हो उसके मुताबिक बदला दिया जाएगा। सो इट्स वेरी क्लियर। तो इसलिए खुशफहमी में ना रहना कि वहां पे जाकर कहें हाँ हमने तो सोचा था पता नहीं ऐसे ही मिल जाएगी जन्नत, हमने तो सोचा था पता नहीं मैंने बस कलमा पढ़ लिया तो उससे ही जन्नत मिल जानी, सही कुछ भी नहीं की, सिर्फ कलमा पढ़ लिया और उसके ऊपर सोच लिया कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मनमानी जिंदगी गुजारूं, जो दिल में आए वो करो। तो वा अन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, और अल्लाह ताला की तरफ है इंतहा, यानी वहां बस जाके एंड होना इस सफर का, वो इंतहा है, वहां इंतहा पे पहुंच जाएंगे, उसके आगे कुछ नहीं है, जिंदगी के भी इख्तिताम है वहां पर। अब वहां पे जाके यानी अब जो जिंदगी की कोशिशें, काविशें, जो दुनिया थी, सारी चीज का एंड यानी वहां पे पहुंच के हो जाएगा। अब इससे आगे कोई और मंजिल नहीं है जिसके ऊपर पहुंचना है, फाइनल है। यानी अल्लाह ताला के पास इंतहा हो जानी है, सब चीजें वहां पहुंच जाएंगी। उसके पास रिटर्न है यानी उसके पास लौटना है यानी पहुंचना है, एंड है। तो हर चीज वापस लौटेगी उसके पास। तो कयामत भी जब आनी है तो उसके पास जाके ही एंड होगा ना। अभी तो ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, ये सफर चलता ही जा रहा है, वहां पे एंड हो जाना। इसी तरह इंसान की जितनी भी दुआएं हैं उनका एंड उसके पास है, वो वहां पहुंचती हैं, इंतहा वहां है। जितने मसाइल हैं हमारे, जितनी हमारी जरूरियात हैं, उनका भी वहां जाके एंड होता है। वहीं एंड से मतलब है रुकती है वहां जाके, वहां तक इंतहा है, वहां जाके बस स्टॉप है, उसके आगे कुछ नहीं, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं है। समझ आई? तो हम इंसान अपनी जिंदगी में भी कहीं अपनी जरूरतों के लिए मारा मारा फिरता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। असल जो इंतहा है वो अल्लाह ताला के पास है, वहां जाके चीज वहां पहुंचेगी। तो उससे आगे फिर कोई और नहीं है जिसके पास जाना है, कोई और नहीं काम कर सकता हमारे। अब वहां जाके मुंतहा हो जाएगी। वह अन्न हुआ अजहका व अबका, और बेशक वो ही है जिसने हंसाया और जिसने रुलाया। यानी मैंने आपको बताया कि अन्ना हु, अन्ना में भी ताकीद है और हुआ में भी हसर का माना आ जाता है। यानी सिर्फ वो ही है जो हंसाता है और रुलाता है। यानी हंसता इंसान कब है? जब को खुशी होती है। और रोता कब है? जब गम होता है। हंसना और रोना खुशी और गम के असबाब वही पैदा करता है। अगर आज वो हंसा रहा है तो कल को रुला भी सकता है, और आज कोई रो रहा है तो कल को हंसा भी सकता है, वो उसने पैदा करने। हम अपनी खुशियों के लिए कितने मारे मारे फिरते हैं ना, पता नहीं ये मुझे खुशी देगा, ये मुझे खुशी देगा। नहीं, खुशी और गम तो अल्लाह के पास है, वही हंसाता है वही रुलाता है। और सुभान अल्लाह कितनी ये बड़ी चीज है ना। ओके, इंसान सोचते हैं ना, जब हमने कहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, हर चीज जो है उसकी मिल्कियत अल्लाह के पास है, तो कभी सोचा कि इन इमोशंस की, हंसाना और रुलाना भी मेरा अल्लाह के पास ही। मैं हंसती हूं तो वो भी अल्लाह ताला तेरी वजह से, और मैं रोती हूं तो थे वो भी तेरी वजह से। तो फिर अगर इंसान चाहता है कि वो ना रोए, एक रोना तो अच्छा वाला रोना है जो अल्लाह ताला के खौफ से रोना, जो अपने गुनाहों पे रोना, और एक गमों पे रोना, या ऐसी आजमाइशों के ऊपर रोना, ऐसे दुखों पे रोना। तो अल्लाह ताला के पास है वो चाबी जो हंसने की है या रोने की है। वो चाहे जिसका रोना खत्म करा दे और हंसा दे उसको, चाहे जिस वो हंस रहा है उसको रुला दे। तो कितनी एज पे हैं हम, और कितने यानी बेबस हैं हम कितने मोहताज हैं। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि तुम खुद ही हंसते हो, खुद ही रोते हो। इस चीज को भी बता दिया कि ये भी अल्लाह के कब्जा है, कुदरत में है। तुम सोच लो फिर, बाज लोग खुशियों की खातिर ना, अपनी खुशियों की खातिर अल्लाह ताला को नाराज कर देते हैं कि बस मुझे ये खुशी मिल जाए, और या इससे मेरे बच्चे खुश होते हैं, इससे मेरी फैमिली खुश होती है, और इससे मुझे खुशी मिलेगी, चाहे अल्लाह ताला नाराज हो रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, आप देख लें कहीं घर, अभी इतनी शादी का माहौल होता है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला आजमाइशों से और आफतों से महफूज रखें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ी देर बाद ही वहां पे मातम हो रहा होता है, सफ़े मातम बिछी होती है, यू नेवर नो। आप नहीं कुछ कह सकते। तो जिसको ये पता हो ना, अन्ना हु हुआ अदहा कवा अबका, वो तो फिर गिर ही जाएगा अल्लाह के आगे कि अल्लाह सारा कुछ तेरे हाथ में, मेरी खुशियां तेरे हाथ में, तू चाहे मुझे हंसा दे, तू चाहे मुझे रुला दे। तो अल्लाह तू मेरे ऊपर अपना करम करना, रहम करना। ऐसा इंसान कैसे फिर अकड़ सकता है? तेरी तो डोर उसके हाथ में है, तू कैसे अकड़ेगा? तू कैसे अफोर्ड कर सकता है उसको नाराज करना? देखिए इंसानों के हाथों में आपकी खुशी और गम नहीं है, वो हम समझते हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये भी ईमान होना चाहिए कि मैंने आपको बताया ना, अन्ना हूँ और हुआ में यही तो बात आ गई कि ऐसा नहीं कि अल्लाह के हाथ में भी हंसाना रुलाना किसी और के हाथ में भी है, नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ उसके हाथ में। खुशी के मौके हमारी जिंदगी में लाना भी उसके हाथ में, और गम लाना भी उसके हाथ में। अल्लाह हू अकबर, ये स्केरी बात है ना, फिर डर जाना चाहिए इसके बाद, क्योंकि कोई रोना नहीं चाहता। फिर कैसे उसको नाराज करें जिसके हाथ में है ये पावर कि हमें रुला दे, हाथ में ये पावर कि हमें हंसा दे। वह अन्ना हुआ अमाता व अहया, और बेशक वो ही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। मौत का जिक्र पहले आया क्योंकि पहले मौत थी उसके बाद जिंदगी। खलकल मौत वल हयात, उसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को, ये भी उसने पैदा किए हैं। वो ही मारता है, वो ही जिंदा करता है। इसका मतलब कोई एक्सीडेंट मार नहीं सकता, कोई बीमारी मार नहीं सकती। जो लोग सोचते हैं कैंसर मुझे मार देगा बस अब तो मेरी मौत ही है, नहीं, कैंसर किसी को मार नहीं सकता, कोई बीमारी नहीं मार सकती, मौत अल्लाह के हाथ में है। वो बीमारियों से ना डरो, ऐसे हादसात से ना डरो, अल्लाह ताला चाहे तो मौत ही ना आए किसी को बीमारी के बाद भी, अल्लाह ताला चाहे तो बीमारी के बगैर ही मौत दे दे। तो हमारा काम क्या है? उस रब के आगे बिछ जाना, झुक जाना, जिसके हाथ में ये सब कुछ है, ये हमारी भी और जितनी भी मखलूक है, जितने भी हमारे प्यारे रिश्ते हैं, जितने भी हमारे महबूब लोग हैं, उन सब की जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। और ना ही किसी को ये कहें कि भाई ये है तो इसकी जिंदगी चल रही है, या ये डॉक्टर है तो इसको जिंदगी मिल जाएगी, या इस जगह पे नहीं पहुंचे इसलिए मौत आ गई, नहीं, वो मौत इनमें से किसी चीज से भी नहीं मौत आती, और इनमें से किसी चीज से भी जिंदगी नहीं मिल सकती। हाँ अल्लाह ताला सबब बना देता है, हम सबब को ज्यादा देखते हैं। अगर बीमारी आई और उसके बाद मर गया तो सबब उसने बना दिया बीमारी को, लेकिन इटसेल्फ बीमारी नहीं कुछ कर सकती। अगर डॉक्टर आ गया था, उसने आके कोई दवाई दी थी और उसके बाद वो सेहतियाब हो गया, तो वो डॉक्टर नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला के हाथ में जिंदगी है, जिसने जिंदगी नहीं दी उसको सिर्फ सबब बनाया। तो हम सबब को ज्यादा देख रहे हैं और देने वाले को देखते नहीं है। ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई बहुत बोनस का कोई लेटर आए कि भाई आपको इतना बड़ा बोनस मिलना है, और आप जो है वो उसके ही हाथ चूमते जा रहे हैं जो डाकिया लेकर आया, जो पोस्टमैन है वो आपकी नजर में इतना बड़ा हो गया कि तूने मुझे ये दिया है, भाई उसने नहीं दिया, जो भेजने वाला है असल तो उसका कारनामा है ना, ये तो सिर्फ कैरियर था, ये तो सिर्फ सबब बना इसको लाने का। वअन्नहु खलक ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, और उसी ने पैदा किया जोड़ों को, मुजक्कर और मोनस। इससे पता चलता है कि जोड़ा सिर्फ मुजक्कर मोनस का होता है, मर्द मर्द का जोड़ा नहीं होता, औरत औरत का जोड़ा नहीं होता, जो अब बना लिए गए हैं जोड़े, अल्लाह ने बनाए और वो सिर्फ मर्द और औरत के ही हो सकते हैं। ये देखें सुभान अल्लाह, इंसान दोनों ही हैं लेकिन एक मुजक्कर है और एक मुअन्नस है, एक ही नुतफे से दोनों पैदा हुए, नुतवा तो एक ही है, लेकिन कोई मुसक्कर बन गया कोई मुअन्नस। दोनों की खसूसियात डिफरेंट, सिफात डिफरेंट, तबीयतें डिफरेंट। तो अल्लाह ताला ने जोड़ों में पैदा किया और दोनों को अलग अलग पैदा किया। अब इसके बाद ये नहीं है कि मर्द औरतें बन जाए और औरतें मर्द बन जाए, अलग अलग दो चीजें पैदा की हैं। लेकिन आज इंसान सेटिस्फाइड नहीं है उस पे जिस पे अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। जो मर्द हैं वो औरतें बनने का शौक रख रहे हैं, मेकअप करके बैठ गए, जो औरतें हैं वो मर्द बनी हुई हैं। और इनको पैदा किया मिन नुतफतिन, नुतफे से, इजा तुमना, जब वो टपकाया जाता है। तो ये पहली पैदाइश की बात नहीं हो रही, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो नुतफे से नहीं पैदा हुए थे। ये बाकी उनके अलावा जितनी भी इंसानियत है उसकी बात हो रही है कि ये इनको अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के सूरत में जोड़ों में पैदा किया और नुतफे से पैदा किया, एक पानी की बूंद से, जिसको देख के इंसान कभी सोच नहीं सकता कि इसके अंदर ये डीएनए है, इसके अंदर उस मर्द की खसूसियात हैं, उसकी आदात इसके अंदर, उसकी शक्लो शबाहत इसके अंदर, हिस्ट्री इसके अंदर, यानी सेव हुई भी है। ऐसे ही है जैसे कि कोई चिप हो, कोई कोई ऐसी चीज हो जिसमें सारी हिस्ट्री उसकी पड़ी हुई है, उस पानी की बूंद में, सुभान अल्लाह। तो उस नुतफे से पैदा किया जब वो टपाया, वह अन्ना आलैहि नशअतुल उखरा, और दूसरी तरफ दफा उठाना भी उसी पे है। जब वो इससे पैदा कर सकता है पानी के कतरे से, तो फिर दूसरी दफा पैदा करना क्या मुश्किल। वअन्नहु हुवा अग्ना व अकना, और बेशक वो ही है जिसने गनी किया और जिसने अकना। अगना और अकना की बहुत सारी तफसीरें आपको किताबों में मिलेंगी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अगना का मतलब है किफायत किया, और अकना फकीर कर दिया, और हासिल करने की हिर्स में फकीर कर दी। क्योंकि इंसान कभी भी वो सेटिस्फाइड तो होता नहीं ना, और मिल जाए तो वो हमेशा फकीर ही रहता है। तो वही चाहे जिसको अगना कर दे, अकना कर दे। इसी तरह इसकी ये भी तफसीर की गई है कि किसी को मईशत में गनी कर दिया और माल में फकीर कर दिया, यानी काम कारोबार में तो बहुत उसकी इन्वेस्टमेंट तो बहुत थी, लेकिन उसके पास माल इतना नहीं है, उसमें उसको फकीर कर दिया। इस तरह ये भी कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी रजा और इताअत की दौलत अता फरमाई और खुशहाली दे दी, तो ये भी है इसमें। अगना अपना को ये भी कहा गया कि अल्लाह ने एक को गनी कर दिया और मखलूक को उसका मोहताज कर दिया। अकना का मतलब मखलूक को उसका मोहताज कर दिया। एक यह कि अल्लाह ताला ने अगना और अकना का इसको गनी कर दिया और उसको राजी कर दिया। फिर ये इसी तरह यह है कि अकना का माना फकीर और मोहताज कर दिया, और ये भी है कि उसको साहिब औलाद कर दिया। तो यानी अगर ऑपोजिट लें तो फिर यह है कि एक को गनी कर दिया और एक को फकीर कर दिया। असल तो ये है, उसके बाद उसकी आगे बहुत सारी तफसीरें, किसी को ये भी किसी जगह पे है कि मालदार कर दिया अकना का माना। तो यानी ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी को गनी कर दे बिल्कुल लोगों से बेनियाज कर दे, उसको लोगों की कोई मोहताजी नहीं, और दूसरे को अकना कर दे कि उसको मोहताजी है लोगों की, वो मोहताज है अपने काम करने में या अपने चलने फिरने में या अपने और चीजों में। अल्लाह अकबर। तो किसी को खाली हाथ कर देता है, किसी को इतना मालदार कर देता है, उसके फैसले हैं। अब हम इसके ऊपर एतराज करने बैठ जाएं, उसको क्यों इतना दिया, वो तो ऐसा है, मुसलमानों के पास तो सारा कुछ होना चाहिए, काफरों के पास तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो तो अल्लाह के नाफरमान है, उसके पास फिर दौलत क्यों इतनी आ गई, शायद पता नहीं हम भी नाफरमानी करेंगे तो हमारे पास भी बहुत हो जाएगा, काफिर इतनी तरक्की कर रहे हैं, पता नहीं उनका कुफर ही इतना अच्छा है कि वो तरक्कियां करते जा रहे हैं, हम भी उनको कॉपी कर लेते हैं, और वैसे ही बेहयाई और वैसे ही नंग धड़ंग और वैसे ही हम गुनाहों के काम करते हैं, तो शायद हम भी फिर इतने ही टॉप पे पहुंच जाए। नहीं, इन चीजों से नहीं, अल्लाह ताला जिसको चाहे अगना कर दे, जिसको चाहे अकना कर दे। ये कितनी इसमें तौहीद है ना, कि तौहीद की तरफ आओ, वो ही अकेला ही है जो करता है। अन्ना हुआ अगना वाकना, अन्नहू हुआ अधवा कवाब का, अन्नहू हुआ मातवा है। कितनी रीइन्फोर्समेंट है कि हर चीज ही तुम्हारी उसके हाथ में है। तो फिर इंसान किसी और तरफ क्यों जाए, किसी और के दर पे क्यों झुके, किसी और को मालिक क्यों समझे, किसी और को राजी करने की कोशिशें क्यों करे। उसकी तो खुशी गम जीना मरना और उसका मोहताजी या बेनियाजी, माल या फकर, सब कुछ ही उसके हाथ में। और फिर अन्ना हुआ रब शेरा, वो ही है रब शेरा का। शेरा असल में एक सितारे का नाम, और उसको डॉग स्टार भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सितारा बहुत बड़ा सितारा है और सूरज से भी 23 गुना ज्यादा रोशन है, और ये गर्मियों में ज्यादा वाजे होता था। हुजा कबीला खास तौर पे इसकी परस्तिश करते थे। तो रब उसका भी अल्लाह ही है, वो तो एक सितारा है, वो तो एक मखलूक है। तुम उस मखलूक की पूजा करने लगे। रब कौन होता है? जो खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर यानी सस्टेनर भी उसका वही, पैदा करने वाला भी वही, मालिक भी वही, उसको सस्टेन भी, इसको रखा भी उसने ही है। तो उसका रब अल्लाह है, तो तुम उसके रब की पूजा करो ना कि उसकी करने लग गए। वो अन्नहु अहलक आदन उला, और उसने हलाक किया आद को, जो पहले आते, आद जो पहले आद थे का मतलब वो आद जो हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। आदे सानी समूद को कहते हैं, ठीक है। आदे उला इनको कहते हैं, क्योंकि उन वो भी आद से, आद की आगे नस्ल में से थे ना समूद। बस कि उनको भी अल्लाह ताला ने हलाक किया। कैसे हलाक किया था हमें पता है, आंधी से कर दिया था। वह समूद अफामा अबका, और समूद को भी बस कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा, कुछ बाकी बचा ही नहीं, एक काफिर भी नहीं बचा था, एक बच्चा भी उनका नहीं बचा, एक बूढ़ा भी नहीं बचा। और आपको पता है उनको चीख ने हलाक किया था। वह कौम नूह मिन कबल, और कौम नूह को भी इनसे पहले, क्योंकि कौम नूह इनसे भी पहले आई थी। इन्नहुम कानूहुम अज़लमा व अतगा, वो थे बहुत ज्यादा जाले और बहुत ज्यादा सरकश। तो हमें पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आद और समूद से पहले का है, और वो लोग बहुत ज्यादा जालिम थे और बहुत ज्यादा ही सरकश थे, जो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के लोग थे। देखिए अब वो नूह अलैहिस्सलाम के साथ इतना बुरा करते थे, तो इतने 950 साल की तबलीग पे भी उन्होंने नहीं माना, तो वो कितने सरकश होंगे। वल मुतफिका अहवा, और ऊंधी गिरने गिरने वाली बस्तियां जिनको ऊपर से नीचे मार दिया गया, यानी उल्टा दिया गया था। और ये कौन सी है जिनको उल्टाया गया था? कौमे लूत, वो भी अल्लाह ताला ने ही उनको हलाक किया। इस हलाकत की बात पीछे से ही आ रही है। वह अन्नाहु अहलका, किस किस को? आद को, समूद को, कौमे लूह को, और मुतफिका, जो मुतफिका बस्तियां जो सारी, जो यानी कौमे लूत की भी जो थी ना, 5 बस्तियां थी, जिनमें सद्दूम की बस्ती सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थी। जैसे से वर्ड जो इंग्लिश में आता है सॉडमी, इस अमल को कहते हैं, वो भी उसी शहर की मुनासबत से कि ये अमल जो कौमे लूत करती थी। तो ये ऊंधी गिरने वाली बस्तियां इनको ऊपर से नीचे फेंका गया, अल्लाह ताला का कितना गजब था इनके ऊपर कि इनको उल्टाया भी गया, पत्थरों की बारिश भी की गई, इनके ऊपर पानी भी आ गया। और फगशा हा मा गशा, तो ढांप लिया उसको जिस चीज ने ढांप ढांपा, तो यानी क्या चीज ने उनको ढांप लिया था? अजाब ने भी ढांप लिया था, पत्थरों ने भी ढांप लिया था, नीचे उसके चले गए ना पत्थरों के। तभी अला रब्बिक तमारा, तो फिर अपने रब की किन किन नियमतों पे तुम झगड़ते हो, किन किन बातों पे तुम बहस करते हो, अपने रब के किस किस कारनामे को, किस किस बात को, किस किस निशानी के ऊपर तुम जुबान खोलते हो और उसको झुठलाते हो और उस पे झगड़ते हो और उस पे बहसें करते हो। अरे इंसान को तो फिर शुक्रगुजारी के अंदर झुकना चाहिए, और इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों और उसके कारनामों को समझना चाहिए। ये उसकी निशानियां हैं, उनकी बात करनी चाहिए इसके ऊपर, और ना कि ये कि इसके ऊपर बहस करें या इतराज करें और इनकार कर दे या शक करे। लेकिन ये तो कौमों की बर्बादी की बातें हैं, तो फिर इसके ऊपर ये क्यों कहा गया? ये कैसे नेमत हो गई? क्योंकि अभी बर्बादी की बात आई है, उनके ऊपर हलाकत आई है, अजाब आया है। इसलिए दो तरह से, इसलिए कि जालिम जो होते हैं वो जमीन का बोझ होते हैं, उनको तबाह कर देने से दूसरों को निजात मिलती है। तो ये दूसरों के लिए खैर होती है जब जालिमों को अल्लाह ताला इस दुनिया से खत्म कर देता। नंबर 2, उनकी खबर दे के, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है कि उनकी हलाकत की खबरें हमें बता दी ताकि हम संभल जाएं, हम इबरत हासिल कर लें, हम बाज आ जाएं। लेकिन इंसान झगड़ों में ही पड़ा रहता है, नहीं ये उसको तो इस वजह से हलाक किया हुआ, वो जो कौमें हैं इस वजह से मिट गई, उनके ऊपर तो जलजला आ गया था ना इस वजह से। ये नहीं कहते कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, शिर्क किया था, उन्होंने ये बदअमाल किए थे। तो इस चीज को बताया गया कि अल्लाह की कुदरत की निशानी देखो कि अल्लाह ताला ने कैसे इनको खत्म कर दिया, इनमें झगड़े ना करते फिरो, बहसे ना करते फिरो। खबर, और ये अल्लाह ताला का कितनी बड़ा इनाम है कि उसने इंसान को सीधा रास्ता दिखा दिया, हिदायत का सामान दे दिया और तरह तरह से उसको समझाया, फिर भी लोग झगड़ते नहीं, झगड़े नहीं छोड़ते, झगड़ते हैं। हादा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा हो सकता है और कुरान करीम की तरफ भी इशारा हो सकता है कि ये नज़ीर है मिनन नुज़ुरिल ऊला। अगर कुरान की तरफ हो तो इससे पहले भी डरावे आए और ये भी एक डरावा है कि तुम, वार्निंग है, यानी ये इसमें वार्निंग्स हैं, इसके अंदर इंसान को खबरदार करने का सामान है कि देखो ये कौमें हलाक हो गई इन्हीं कामों की वजह से, तुम लोग सीधे हो जाओ, होश पकड़ो, किधर जा रहे हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया आए, नुज़ुरुल उला पिछले अंबिया भी आए थे, जो भी नज़ीर थे, जो भी खबरदार करने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं की एक कड़ी है और आखिरी कड़ी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आना, लेकिन उन्हीं में से एक है जो पिछले भी अंबिया आए थे, कोई नई बात नहीं हुई कि नबूवत आई है। अजीफतिल अजीफा, करीब आ गई, करीब आने वाली, कयामत के वकूक को कहा गया कि कयामत का वक्त करीब है, और हर जो चीज चल पड़ी हो ना वो करीब ही होती है, जो आने वाली चीज है वो करीब ही है। क्योंकि देखिए ना, आप खुद सोचें, हम कई दफा हमारे पास इनविटेशन आते हैं जो 6-6 महीने के होते हैं, कभी बाज दफा साल के होते हैं, हम लगता है इतनी दूर है ये कैसे, लेकिन वो आ जाता है ना फिर दिन, हम सोचते हैं हाय हम इसको इतना दूर समझे हुए थे, देखो वो दिन भी आ गया। इस तरह कयामत है, उसको इंसान सोचता है दूर है, इन्ना हम यराउना हो बाईदा व नराहु हो करीबा, ये इसको बाईद समझते हैं, हम कहते हैं ये करीब, तो ये करीब ही है। तो एक तो जमाने के एतबार से भी करीब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी कयामत की निशानियों में से एक है, इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आना, अब बस कयामत ही आनी है। और जगह के एतबार से भी करीब है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है और जहन्नुम भी तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है, यानी इतना कम फासला है तुम्हारा जन्नत में जाने का में या जहन्नुम में जाने में। नहीं कोई एक नेकी इंसान ऐसी कर सकता है जिससे अल्लाह ताला इतना राजी हो जाए वो जन्नत में सीधा चला जाए, कोई एक गुनाह ऐसा हो सकता है कि वो अल्लाह ताला को इतना नाराज कर दे वो जहन्नुम में चले जाए। तो इतना क्लोज हो तुम जन्नत के भी और जहन्नुम के भी, फिर तो इंसान को डरना चाहिए किसी भी गुनाह से, क्योंकि पता नहीं कौन सा गुनाह जो ये ना हो कि वो जहन्नुम में ले जाने का सबब बन जाए। और नेकियों करने में कभी भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए और उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, हकीर नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या पता वही नेकी ले जाए जन्नत में। हाजिफतिल हाजिफा, करीब आ गई है, करीब आने वाली। तो आजिफा जो है वो कयामत के नामों में से एक नाम है, और हम चाहे कहते रहे दूर है दूर है, लेकिन उसका तो नाम ही आजिफा है, जैसे उसका नाम वाकया भी है, हाका भी है, आरिया भी है, तो इसी तरह आजिफा भी है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, नहीं है उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई हटाने वाला, यानी उस दिन की जो हौलनाकी होगी, जो उस दिन के हालात होंगे, उनको कोई भी, किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं, किसी के पास इतनी कुव्वत ही नहीं कि वो उनको चेंज कर सके, उनको हटा सके, इसको लाने से रोक सके, या उसमें कुछ चीजों को आगे पीछे कर सके, कोई नहीं रोक सकता। यानी वो अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है वो करीब आ गई है, वो कोई खड़ा होके कहे कि मैं नहीं आने दूंगा कयामत, तो कोई रोक नहीं सकता। या जो उस दिन की हौलनाकियां हैं उनको कोई फेर नहीं सकता, जो तकलीफें होंगी, जो उस दिन के मसाइब होंगे, तो किसी में नहीं ताकत। तो इसलिए इस चीज का ना इंतजार करेंगे, कयामत आ जाए तो फिर ही हम कुछ करेंगे, या हम कहेंगे बस जल्दी आ जानी चाहिए। अब बहुत हौलनाक चीज है। अफमिन हादल हदीस ताजबू, क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो? अल्लाह अकबर, यानी कुरान के ऊपर तुम ताजुब करते हो? तुम कुरान के बात तुम्हें अजीब लगती है? ना, ने इसमें कितनी तिलावत दे दी, कितनी बातें मैं बता दी, इंसान फिर भी इन बातों को पर ताज्जुब करता रहता है। ऐसे हो जाएगा? अच्छा, कयामत आ जाएगी? अच्छा, अभी तक तो आई नहीं। जो बातें भी हैं वो सब सही हैं। इकतरबत लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त आ गया और वो उनका हाल क्या है, गफलत में पड़े हुए। और क्या करते हैं, वतदहकून वला तबकून, और तुम हंसते हो और रोते नहीं हो। इतनी बड़ी बातें तुम्हें ये कुरान बता रहा है कि हजिफतिल हाजिफा, उसमें फिर कोई किसी को कोई चीज किसी से दूर नहीं कर सकेगा, किसी के लिए जहन्नुम का फैसला हो गया तो वो इसको भी नहीं हटा सकेगा। अनाउंसमेंट हो गई तो वो ये नहीं कह सकेगा मैं नहीं मानता इस फैसले को, अब मैं एक और ट्रायल पे जाऊंगा, अब मैं किसी और सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। नहीं, कोई इससे बड़ी, वो मुंतहा है बस, उससे आगे कुछ नहीं। यहाँ पे तो आप नहीं, एक कोर्ट है फिर उससे बड़ी दूसरी कोर्ट में जाते हैं, फिर उससे बड़ी तीसरी कोर्ट में चले जाते हैं, वहां से आगे कुछ नहीं है। तो तुम हंसते हो और तुम रोते नहीं हो, इससे क्या पता चलता है कि इंसान को रोना चाहिए? रोना चाहिए, और कुरान पढ़ के रोना तो पसंदीदा है। इंसान पढ़े और उसको रोना आए, ये पता नहीं क्या मेरा अंजाम है। लेकिन हंसना किस चीज की अलामत है? कि बेपरवाह है, गाफिल है, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। और तुम क्या करते हो, तुम्हारा रवैया क्या है? वो अंतुम सामिदून, और तुम सामिद हो। सामिद की तफसीर बहुत सारी तफसीरें की गई, एक के गाफिल हो, गफलत में पड़े हो। इतनी बड़ी चीज आ रही है कयामत जैसी, और इतनी करीब भी है। और अब वो पता है ना, जैसे इंसान की मौत आती है तो उसकी कयामत वहीं से शुरू हो जाती है, उसकी तो स्टार्ट हो गई। जो बाकी आएंगे वो एक दिन कयामत का दिन देखेंगे, वो तो बाद की बात है, लेकिन जिसकी मौत आ गई उसका तो कयामत का स्टार्ट हो चुका है। तो तुम उससे गाफिल हो? सामित का दूसरा माना ये राज भरतना, कि यानी तुम उसकी परवाह ही नहीं कर रहे, तुम्हें कोई उसकी फिक्र नहीं है। फिर तकबुर करना, कि वो अकड़े फिर रहे हैं, अपने आप को ही बड़ी चीज समझते हैं, यानी कयामत को कोई खातिर में ना लाना। इसी तरह गाना गाना भी सामित है, यानी तुम गाने गाते हो। उस जमाने में तो उन्होंने क्या कहा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हैं तो तुम, वो गाने बजाने वाली लौंडियां थी, ये गाना गाएं ताकि लोग कुरान ना सुने और गानों की तरफ आए। तो तुम्हारा यह हाल है कि ये कुरान को छोड़ के और गाने बजाने में लगे हुए हो, यानी और ही चीजों में पड़े हुए हो, गफलत वाली। गाना बजाना भी गफलत है, एराज बरतना भी इसलिए ही होता है कि इंसान गफलत में है। नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं इसको ले रहे, इसको पढ़ें, इसको समझें, इसकी तरफ आएं, इससे जिंदगी बदलने की कोशिश करें, इसको अपने दिल पे लें, इसको पढ़ के रोएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ऐसा खुतबा दिया था कि लोग अपने कपड़ों के अंदर अपने चेहरे छुपा के रोने लग गए, वो ऐसे रोते थे। तो बजाय इसके जो कुरान कहता है उसके ऊपर चलें, और जिनसे रोकता है उससे रुकें। बेपरवाही की इंतहा यह है कि जानना भी नहीं चाहते, कहते हैं हमने तो रुकना ही नहीं, हमसे तो नहीं, हमसे तो नहीं अमल होता, हमने तो वो करना ही नहीं जो कुरान कहता है। कितने लोगों को आप सुनते हैं, हमसे अमल नहीं होता, लिहाजा फिर हमने पढ़ के क्या करना, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम बना लिया हुआ कि मैंने नहीं अमल कर। ये गफलत है ना, इस चीज की सीरियसनेस है ही नहीं कि एक दिन बड़ा आने वाला, बस मगन है यहाँ पे, गफलत में पड़े हुए हैं या गुनाहों में पड़े हुए हैं या अपने दुनिया में ही इतने मगन हुए हैं, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। तो ये सब माने इसमें है, हदीसी ताजपून, तुम इस बातों के ऊपर तुम ताजुब करते हो, हैरान होते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते नहीं हो, तुम गफलत में पड़े हुए हो, तुम्हें ताजुब इसके ऊपर आता है, तुम इसकी बातों के ऊपर ताजुब करते हो, ये तुम्हें अचंभा लगती है, अजीब लगती है। तो इंसान सोचे मेरा कुरान के साथ क्या रवैया। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अहले सुफा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर रोने लगे, हत्ता कि उनकी आंखों से उनके चेहरों पे आंसू बहने लगे, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप भी रोने लगे। तो फिर आपकी रोने की वजह से वो फरमाते हैं कि हम और रोए, अबू हुरैरा आपको पता है ना असहाबे सुफा में से, तो कहते हैं हम और रोने लगे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स खौफे खुदा से रोया वो कभी दोजख में दाखिल नहीं होगा, और जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी पर मुजिर हो वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह तुम्हें ले जाएगा, और ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाहों पे इस्तगफार करेगी। मेरे अल्लाह ताला को इस्तगफार इतनी पसंद है, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाएगा और उन पर रहम फरमाएगा, बेशक वो बहुत मगफरत फरमाने वाला और बहुत रहम करने वाला। ये तिर्मिज़ी में है, इसी तरह तिर्मिज़ी की एक और रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जिनको तुम नहीं देखते, और मैं उनको सुनता हूँ जिनको तुम नहीं सुनते, आसमान चिरचिरा रहा है और इसका चिरचिराना हक है, आसमान में चार उंगली भी खाली जगह नहीं जिसमें कोई फरिश्ता सर झुकाए अल्लाह की बारगाह में सजदे में ना पड़ा। और अगर तुम उन चीजों को जान लेते जिनको मैं जानता हूं तो तुम हंसते कम और रोते ज्यादा, और तुम बिस्तरों पे अपनी बीवियों से लज्जत हासिल ना कर पाते, और तुम जंगलों में निकल जाते और अल्लाह को पुकारते। और अलबत्ता मैं ये पसंद करता हूं कि मैं एक दरख्त होता जिसको काट दिया जाता, यानी इस हिसाब किताब के खौफ से, यानी वो क्या दिन है जो आने वाला है कि अगर तुम्हें पता चल जाता ना वो सारी हकीकतें, वो सारी बातें, जहन्नुम क्या चीज है, कितनी बड़ी बला है, अल्लाह ताला का हिसाब किताब कितना सख्त चीज है, कयामत क्या बड़ी आफत है, सारी चीजें इंसान जान लेता ना, बस कोई इन चीजों का यकीन आ जाए ना तो वो कम हंसता और रोता ज्यादा। और वाकई हमारे असलाफ जो है ना वो हंसते कम थे रोते ज्यादा थे, वो कुरान को पढ़ के रोते थे, जहन्नुम की आयतें आ जाती थी तो उसको पढ़ के रोते थे। तो उमर के बारे में आता है कि खड़े होते थे जब नमाज पढ़ा रहे होते थे, इमामत कर रहे होते थे, तो के बारे में आता है जब ऐसी कोई आयत आती थी इस कदर रोते थे उनकी आवाज पीछे तक जाती थी सफों, और ऐसे लगता था कोई हंडिया जरा वो खोल रही है, इस तरह रोते थे। तो हमें परवाह ही नहीं, ना कोई डर, ना कोई खौफ, ना कोई फिक्र, ना कोई परेशानी इस चीज की हमने लगाई, क्योंकि तो हमारे पास दुनिया की परेशानियां इतनी हैं कि हम इसकी परवाह ही नहीं करते कि उस दिन का क्या होगा। अल्लाह ताला के आगे खड़े होना ये कितनी बड़ी बात है, हाँ हमारी टांगे कांपने लगती हैं, पुलिस वाला हमें रोक ले, टांगे ठंडी पड़ने लगती हैं, इमिग्रेशन वाले के सामने खड़े हो जाए, किसी इंटरव्यू पे जाना हो तो हमारे पसीने निकलने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में खड़े होना ये सोच के तो कुछ भी नहीं होता, हमें पता ही नहीं ना, ना हमने जानने की कोशिश की, ना अल्लाह ताला की पहचान है, ना उसकी अजमत हमारे दिल में है, ना उस दिन की हौलनाकी की हमें कोई वो जरा सा भी शऊर हो। बस भागे जा रहे हैं जिंदगी में, और हम क्या है, हम हंसते ज्यादा और रोते कम है। आते हैं फरमाए पल यद हक को कलीन अव्वल यब को कसीरन, होना ये चाहिए कि हम हंसे ज्यादा, हंसे कम और रोए ज्यादा, लेकिन कुरान कहता है लेहद वल यथा को कसीरा ले अब को कलील, हंसते ज्यादा रोते कम है। फसजुदू लिल्लाही वअबुदू, बस सजदा करो अल्लाह के लिए और इबादत करो उसकी। इसके बाद तुम्हें करना ये चाहिए सजदे में गिर पड़ो अल्लाह ताला के आगे। जब ये आयत उतरी थी तो सब सजदे में गिर गए थे, काफिर तक, जिन भी और इंसान भी, क्योंकि सजदे में इंसान जाके अपने आप को अल्लाह ताला के आगे मट्टी में रोल देता है, अपनी पेशानी को जब अल्लाह ताला के आगे रखता है मट्टी में, तो वो इस चीज का इजहार करता है कि यार रब मैं कुछ भी नहीं, मेरी जात कुछ भी नहीं, मेरी इज्जत कुछ नहीं है, मेरी ये पेशानी जो मेरी इज्जत है कुछ नहीं, मेरा मेरी अक्ल कुछ नहीं, मैं तेरे आगे ऐसे बिछाऊं। ये इंतहाई जिल्लत की, इंतहाई आजजी की पोजीशन होती है सजदे की जो है। तो जब इंसान ये सब बातें सुनता है तो उसके बाद उसको सजदा करना चाहिए, बस सजदा करो और उसी की इबादत करो, उसकी इबादत में लग जाओ। और इबादत का मैंने आपको बताया था, हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राजी होता हो, और उन कामों को देखना है तो वो कैसे लिस्ट बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देख। तो सजदे तिलावत यहाँ पे आता है, और आपको बताया सजदे तिलावत जो है आप बगैर वुजू के भी कर सकते हैं, बगैर तहारत के भी कर सकते हैं, तहारत अफजल है, लेकिन अगर तहारत नहीं भी है, आप नापाकी की हालत में भी हैं, तो तब भी, यानी औरतें हैज में भी हैं तब भी वो सजदे में जा सकती हैं, क्योंकि ये नमाज का नहीं है, ये सजदे तिलावत है, बस किबला रुख हो जाए और झुक जाए अल्लाह ताला के आगे, अल्लाहू अकबर कह के और सजदे में इंसान चला जाए। और इसकी अपनी अलग से भी दुआएं, आप सुबहाना रब्बी अल आला भी पढ़ सकते हैं, और सजद वजही अल लिल्लज़ी खलक़हु वो वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं। जब सर उठाना है तो फिर अल्लाहू अकबर कहने की जरूरत नहीं, फिर वैसे ही सर उठा सकते हैं। हाँ वो पता है वसजुद वक्तरिब, अल्लाह ताला ने फरमाया सजदा करो और करीब हो जाओ, क्योंकि ये पोजीशन वो है जिसमें सबसे ज्यादा इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है। और सजदे ज्यादा करने चाहिए अपनी जिंदगी में, इसलिए कि सजदे करने पे भी इंसान को एक नेकी मिलती है, गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। और जो सजदे की जगह है ना, ये नहीं कि आपके माथे पे निशान है तो फिर आप बहुत सजदा करने वाले हैं वरना नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप बहुत सजदा करने वाले हैं, आप जो सजदों की जगह है ना, जैसे ये माथा है, ये इसके वो जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, इसलिए कसरत करनी चाहिए सजदों की। और ये कोई फर्ज नहीं है कि आपने जरूरी यहाँ पे करना है, सुन्नत है, मगर इसका अजर है। और शैतान रोता है जब इबने आदम सजदा करता है अल्लाह ताला, क्योंकि इसी सजदा ना करने पे ही तो वो उसको मलामत किया गया और वो आसमानों से निकाला गया। तो जब इंसान सजदा करे तो खुद सोच ले के, जब सजदे में जाए ना सोच ले ये बात जहन में लेकर आए, ऐसे ही एक रस्मी सा ऐसे झुकना नहीं, अल्लाह ताला मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो सब कुछ ही तू है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व मम्माती लिल्लाह रब्बिल, मेरा तो जीना मरना ही तेरे लिए यार। आप तो अपने दिल को भी झुकाएं, अपने आप को झुकाया ना, अपने दिल को भी झुका दे अल्लाह तेरी चाहत के आगे, तेरा दिल झुका, तेरी मर्जी के आगे, तेरे हुक्मों के आगे मैं झुक गई। तो हम इसके ऊपर सजदा करते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा वा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا